लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महाकिर्चघर के प्रांगण में रविवार 10 नवंबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बुनजोर्नो। L'odierna pagina evangelica ci offre uno stupendo insegnamento di Gesù sulla resurrezione dei morti.
अति प्रिय भाइयो एवं बहनों, सुप्रभात। आज का सुसमाचार पाठ मृतकों के पुनरुत्थान पर यीशु की एक अनोखी शिक्षा को प्रस्तुत करता है। सदूकी ईसा को फंसाने की ताक में रहते थे। उन्होंने उनके पास गुप्तचर भेजे, जिससे कि वे धर्मी होने का ढोंग रचकर ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं और उन्हें राज्यपाल के कब्जे और अधिकार में दे सकें। उन्होंने ईसा से पूछा, मूसा की संहिता अनुसार यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए, तो वह अपने भाई की विधवा को विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे, तो अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी जो सात भाइयों की पत्नी रह चुकी हो। यीशु उनके जाल में नहीं फंसे और उन्हें जवाब दिया कि पुनरुत्थान इससे परे है। यीशु ने कहा कि जो लोग परलोक और मृत्यु के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते, वे तो स्वर्ग दूतों के सादृश्य होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। संत पापा ने कहा,
E con questa risposta Gesù anzitutto invia i suoi interlocutori e anche a noi.
इस जवाब के साथ यीशु अपने वार्ताकारों और हमें भी निमंत्रण देते हैं कि हम चिंतन करें कि पृथ्वी जहां हम जीते हैं, आज मृत्यु एकमात्र आयाम नहीं है जिसमें हम पूरी तरह प्रकट होंगे। हम ईश्वर की संतान हैं। यह हमें महान सांत्वना प्रदान करता और मृत्यु के परे जीवन जीने के बारे यीशु के सरल और स्पष्ट शब्दों को सुनने की आशा देता है। हमें इसकी अति आवश्यकता है, विशेषकर हमारे समय में जब ब्रह्मांड के बारे बहुत अधिक ज्ञान है किंतु अनंत जीवन के बारे बहुत कम जानते हैं। संत पापा ने कहा कि पुनरुत्थान पर यीशु का यह स्पष्टीकरण पूरी तरह ईश्वर के प्रति निष्ठा पर आधारित है, जो जीवन के ईश्वर हैं। सदूकियों के सवाल के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है, न केवल सात भाइयों की पत्नी रह चुकी महिला अब किसकी पत्नी होगी, किंतु अब उसका जीवन किसका होगा। यह हर युग और हम लोगों के संदेह को भी छूता है कि इस पृथ्वी की यात्रा के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। क्या मरने के बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा? यीशु जवाब देते हैं, जीवन ईश्वर का है जो हमें प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं, उस हद तक कि उन्होंने अपना नाम हमारे साथ जोड़ लिया है। वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर हैं। वे मृतकों के नहीं जीवितों के ईश्वर हैं, क्योंकि उनके लिए सभी जीवित हैं। संत पापा ने कहा कि जीवन वही संभव है जहां रिश्ते हैं, एकता है और भाईचारा है। जीवन मृत्यु से अधिक बलवान होता है यदि वह सच्चे संबंध एवं निष्ठा के बंधन पर टिका हो। इसके विपरीत उस व्यक्ति में जीवन नहीं होता जो सिर्फ उसे अपना होने का दावा करता है और एक टापू की तरह जीने की कोशिश करता है। ऐसे मनोभाव में मृत्यु अधिक बलवान होती, यह स्वार्थ की भावना है। और यदि मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ तो मैं अपने हृदय में मृत्यु बो रहा हूँ। संत पापा ने प्रार्थना की कि धन्य कुंवारी मरियम हमें प्रत्येक दिन उस विश्वास को जीने में मदद दे जिसको हम प्रेरितों के धर्मसार में दोहराते हैं, मैं मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ जो इस पृथ्वी से परे का जीवन है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Deudut prathna ke uprant San Papa ne kaha.
Ieri a Granada, in Spagna, stata proclamata Beata Maria Emilia Riquelme Isayas, fondatore delle suore missionarie del Santissimo Sacramento e Maria Immacolata, stata proclamata beata.
Kal Spain ke Granada mein Dhanya Emilia Riquelme Isayas ki dhanya ghoshna ki gayi, jo pautrottam sanskar evam nishkalank Mariam ki missionary dham behnon ke dham sangh ki sansthapika hain. उन्होंने कहा कि नए धन्य युखरिस्त की आराधना तथा सबसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के आदर्श हैं। तब संत पापा ने ताली बजाकर नए धन्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात संत पापा ने दक्षिण सूडान के लोगों की याद कर अपनी अपील दोहराते हुए कहा,
Al caro popolo del Sud Sudan.
मैं देश के सभी कार्यकर्ताओं को ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली की खोज करने का आह्वान दोहराता हूँ कि वे सच्चे भाईचारा का मनोभाव धारण करें जो एकता के सूत्र में बांधता एवं विभाजन के ऊपर उठने में मदद देता है। संत पापा ने दक्षिण सूडान के सभी लोगों की याद करते हुए प्रणाम मरियम का पाठ किया।
आवे ओ मरिया, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
तब अंत में उन्होंने देश विदेश से एकत्रित सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया तथा प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Buon pranzo e arrivederci.
जीवन तेरे दिन प्रभु ये वीरान है जीवन
प्यारा जीवन तेरे बिन प्रभु ये
मेरा सर्वस्व देता प्रभु जी तेरी सेवा में
प्रेम भाव ले साथ आया मैं आज करो तुम मुझे सिखा प्रेम भाव ले।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 11 नवंबर को वाटिकन में हो रहे परम धर्मपीठीय विभागों के अध्यक्षों की सभा के बाद समावेशी पूंजीवाद के लिए परिषद के सदस्यों को संबोधित किया। संत पापा ने कार्डिनल पीटर टर्कसन को उनके परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने 3 साल पहले फॉर्च्यून टाइम ग्लोबल फोरम 2016 में प्रतिभागियों के साथ हुई मुलाकात को याद किया, जिसमें उन्होंने अधिक समावेशी और न्यायसंगत आर्थिक मॉडल की आवश्यकता को संबोधित किया था, जो प्रत्येक व्यक्ति को इस दुनिया के संसाधनों को साझा करने की अनुमति देगा और उसकी क्षमता का एहसास कराने का अवसर होगा। 2016 के फोरम ने अधिक मानवीय अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन में योगदान देने के उद्देश्य से विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु समावेशी पूंजीवाद के लिए परिषद को शुरू किया। संत पापा ने कहा, आपने पूंजीवाद को समग्र मानव भलाई के लिए एक अधिक समावेशी साधन बनाने के तरीकों की तलाश करने की फोरम की चुनौती को स्वीकार किया है। यह बहिष्करण की अर्थव्यवस्था पर काबू पाने और कुछ लोगों द्वारा अत्यधिक संपत्ति और बड़ी संख्या में लोगों की संपत्ति के अंतर को कम करने के अंतराल को कम करता है। वैश्विक स्तर पर गरीबी का बढ़ता स्तर व्यक्तियों और राष्ट्रों के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण के बजाय असमानता की व्यापकता का गवाह है। एक आर्थिक प्रणाली जो निष्पक्ष भरोसेमंद है और जो मानवता के सामने आने वाली सबसे महान चुनौतियों को संबोधित करने में सक्षम है, और यह हमारे विश्व की तत्काल आवश्यकता है। मैं आपको उदार एकजुटता के मार्ग पर चलने के लिए एक नैतिक दृष्टिकोण को प्रस्तावित करता हूँ। यह सच है कि व्यापार एक महान व्यवसाय है जो धन का उत्पादन करने और हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए निर्देशित है। यह उन क्षेत्रों के लिए समृद्धि का एक फलदायी स्रोत भी हो सकता है जहां यह संचालित होता है, खासकर अगर यह नौकरियों के सृजन को अपनी सेवा के एक सामान्य हिस्से के रूप में देखता है। हालांकि प्रामाणिक विकास को केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति और पूरे व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात बजट को संतुलित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार तथा उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत विविधता की पेशकश करना। इसमें स्वयं के व्यक्तिगत रूपांतरण और जरूरतमंद लोगों के प्रति उदारता के आधार पर ठोस आर्थिक मॉडल का नवीनीकरण, शुद्धिकरण और मजबूती शामिल है। संत पापा ने कहा कि नैतिकता से अलग एक आर्थिक प्रणाली अधिक सामाजिक व्यवस्था नहीं लाती, बल्कि उपभोग और बर्बादी की संस्कृति को देती है। जब हम आर्थिक जीवन के नैतिक आयाम को पहचानते हैं, जो कि कैथोलिक सामाजिक सिद्धांत के कई पहलुओं में से एक है, जिसे अनिवार्य रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए, हमें दूसरों की भलाई और उनके अभिन्न विकास के लिए उदारता के साथ दान और मदद करने की इच्छा को बरकरार रखना है। अंत में संत पापा ने कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के मूल सिद्धांतों के अनुरूप अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया और उन्हें तथा उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने का आश्वासन दिया। इसी संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 11 नवंबर को ट्वीट में लिखा, हम प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें हमारे प्रतिदिन की रोटी दें। हमें बर्बादी की संस्कृति को खत्म करना चाहिए। खाद्य पदार्थों की बर्बादी भूख और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। साथ ही संत पापा ने 32वें रविवार के लिए चुने गए पाठों के आधार पर संत लूकस के सुसमाचार पाठ मृतकों के पुनरुत्थान को ध्यान में रखते हुए ट्वीट कर सभी ख्रिस्तियों को मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ज्ञान हासिल करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, आज का सुसमाचार मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में यीशु के सरल और स्पष्ट शब्द हमें बहुत सांत्वना और आशा देता है। वर्तमान में हमें इसकी आवश्यकता है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान समृद्ध है, लेकिन अनंत जीवन के बारे में ज्ञान बहुत कम है। और संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 10 नवंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित भक्त समुदाय और तीर्थ यात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, मैं दक्षिण सूडान के प्रिय लोगों को याद करता हूं, जहां मैं अगले वर्ष दौरा करने की सोच रहा हूं। दक्षिण सूडान के लोगों ने हाल के वर्षों में बहुत अधिक कष्ट झेला है और बड़ी आशा के साथ एक बेहतर भविष्य की, विशेषकर संघर्षों के अंत तथा स्थायी शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इस देश के लिए एक साथ प्रार्थना करने हेतु आप सभी को आमंत्रित करता हूं। इसके बाद संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों के साथ प्रणाम मरिया प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने अप्रैल में वाटिकन में दक्षिण सूडान के राजनीतिक नेताओं के लिए आयोजित आध्यात्मिक साधना को याद किया, जिसमें राष्ट्रपति सल्वा कीर मर्यादित और विपक्ष के नेता रीच मचार भी शामिल थे। आध्यात्मिक साधना के दौरान संत पापा ने घुटने टेक कर दक्षिण सूडानी नेताओं में से कई के पैर चूमकर सुलह का अभूतपूर्व इशारा प्रदर्शन किया। संत पापा ने 10 नवंबर को देश की राजनीतिक प्रक्रिया के सभी अभिनेताओं को आमंत्रित किया कि वे सच्चे भाईचारे की भावना के साथ एकजुटता का प्रयास करें और उन सभी मुद्दों को दूर करें जो उन्हें विभाजित करती है। संत पापा ने उनसे आग्रह किया कि वे बिना थके राष्ट्र की भलाई के लिए सर्वसम्मति की खोज में एक समावेशी संवाद के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखें। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी दक्षिण सूडान के राष्ट्रीय पुनर्मिलन के रास्ते में मदद करेगा। इसके बाद संत पापा ने बोलीविया वासियों को भी याद किया, जो इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के कारण अनेक संघर्षों का सामना कर रहे हैं। बोलीविया में 20 अक्टूबर के चुनाव के विवादित परिणामों के बाद राजनीतिक अशांति और प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा के परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चुनावों में संशोधन करने की प्रक्रिया जो वर्तमान में चल रही है, संत पापा ने सभी बोलीवियाई लोगों, विशेष रूप से राजनीतिक और सामाजिक अभिनेताओं से शांति के माहौल में रचनात्मक और बिना शर्त के परिणामों का इंतजार करने को कहा। बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने 20 अक्टूबर के चुनाव में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने वाले अमेरिकी राज्यों के संगठन के रिपोर्ट के आलोक में फिर से राष्ट्रपति के नए चुनाव की घोषणा की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।